किम क्या दोस्त हम पीड़ा प्रद है नो निसंदेह साधु नाम साधु पुरुषों के लिए विदुषाम विद्वान पुरुषों के लिए किम अपेक्षितम क्या निर्भरता है किम अकार्यम क्या मना है कदर्याणाम अधम पुरुषों के लिए दुस्तजम छोड़ पाना अत्यंत कठिन किम क्या धृत आत्मनाम स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तो वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है, उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती, निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन सा कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। तात्पर्य क्योंकि देवताओं के आठवें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को ले जाकर देने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वह देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देगा। असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आठवीं संतान ही उसका वध करेगी। उसने मान लिया था कि वह देवकी की किसी भी संतान के द्वारा मारा जा सकता है, इसलिए देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की देने का वचन दिया था। दूसरी दृष्टि से वसुदेव तथा देवकी दोनों परम प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण आठवें पित के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न होंगे। भगवान का शुद्ध भक्त होने से वसुदेव कृष्ण को देवकी के आठवें गर्भ से उत्पन्न होते देखने के लिए लालायित थे, इसलिए वे सारी संतानों को तुरंत सौंपना चाहते थे जिससे आठवें संतान की बारी आए और कृष्ण प्रकट हों। इसीलिए प्रतिवर्ष वे एक संतान उत्पन्न करते रहे जिससे कृष्ण यथासंभव शीघ्र ही उत्पन्न हों। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये, तो शुरुआत है कि जब वसुदेव और देवकी की विदाई देवकी की विदाई हो रही थी अर्थात वो शादी के बाद विदाई होती है ना, तो कंस बड़ा प्रसन्न था अपनी बहन की शादी में, तो उसने क्या किया कि हम खुद रथ हाँक करके और बहन और बहनोई को क्या करेंगे, ले चलेंगे कुछ दूर तक खुशी से, प्रसन्नता से। लेकिन जैसे ही रथ पर चढ़ा और रथ को स्टार्ट होने वाला था, कुछ ही समय क्या हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुआ कि रे कंस, तुम जिस देवकी को ले जा रहा है उसकी आठवीं संतान तुम्हारे मृत्यु का क्या बनेगी, कारण बनेगी। ये आकाशवाणी सुनते ही वो रथ को रोक दिया और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। उसने सोचा कि जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे आएगी, सच ही नहीं सच। यही सोचा कि हम जड़ को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन पति का कर्तव्य वसुदेव जी ने निभाया। अगर पत्नी मुसीबत में हो तो पति को आगे आना चाहिए, अब पति मुसीबत में हो तो बोलिए पत्नी को भी आगे आना चाहिए। ये नहीं कि जब पति मुसीबत में आ जाए पत्नी छोड़कर चली जाए कि गभाड़ में हम अपना दूसरा रास्ता देखे, नहीं। जब संबंध बनता है तो सुख और दुख दोनों का क्या होना चाहिए, साथी होना चाहिए। अभी रामनवमी आ रही है, इसमें यही शिक्षा है कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो सीता जी भी तैयार हो गई, जबकि सीता जी को बन जाने का परमिशन नहीं था, लेकिन उन्होंने किसका साथ दिया, पति का साथ दिया। तो पति पत्नी का जो संबंध कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा मिलेगी सीता और राम से, इसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो साथ देना चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि इस समय मेरा सबसे बड़ा धर्म है किसी तरह से अपनी पत्नी को मृत्यु से बचाना, और कोई टारगेट नहीं था, और यही करना चाहिए। इसे का तत्काल बुद्धि, जब जान मुसीबत में हो तो सबसे पहला काम इंसान क्या करना चाहिए, अपनी जान बचाए। आप सुने कहते ना, जान बचाए लाखों पाए, एक कहावत है ना, एक कहावत इसीलिए बनी है, जान बचाए लाखों पाए। कभी भी आप मुसीबत फंसे हैं तो सबसे पहले उस मुसीबत से अपने आप को क्या करना चाहिए, बचाने का प्रयास करना। विशेष कोई मरने की आ जाए तो उसमें सारी बुद्धि सारी ताकत किसमें लगाना चाहिए, किसी तरह से हम अपने आप को क्या करें, इस समय बचाने, उसके बाद देखा जाए क्या होगा, है ना। ये सिद्धांत है। तो वसुदेव जी ने बड़े दिमाग से कर ये पढ़िए, वसुदेव किस तरह समझा रहे हैं। कहते ना कि कब जब वक्त पड़े तो गधे को मामा कहने में संकोच नहीं, क्लच यही नीति वसुदेव जी ने लाई, हाथ जोड़ करके उसकी तारीफ की कि आप जैसे देवमाल तो कोई है ही नहीं। देखिए चतुराई, क्योंकि जान जब जोखिम में हो तो आपको हर नीति अपनानी चाहिए, ये जान लीजिए। तो उन्होंने यही नीति अपनाई, ऐ नीति क्या हो गई, कारगर हो गई, जबकि कंस बिल्कुल दयावान नहीं था, है ना। तो बता गया कि जो व्यक्ति अहंकारी हो, दुष्ट प्रवृत्ति को हो, तो उससे काम निकालने का एक ही तरीका है, उसकी चाटुकारिता करो, उसकी तारीफ करो कि आपसे ज्यादा कोई महान नहीं है धरती पर, और तब देखिए आपका बिगड़ता काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और लोग यही करते हैं, कलयुग में तो यही हो रहा है, सच ही नहीं से। जब किसी से कुछ लेना होता है तो लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जब किसी से उधार पैसा लेना होता है तो लोग कितनी से, मैं आज हमें इतना उधार दे दिए, एक महीने के बाद मैं दे दूंगा, राइट। कितने झूठी आश्वासन देते हैं, और एक बार आपने दे दिया तो आप फंस गए, तो आपका साल निकल जाएंगे, पैसा वापस निकाल लेंगे, ये सच ही नहीं सच। लोग ऐसा हो रहा, संसार बहुत विचित्र है। इसी नीति का उपयोग जो है बसदेव जी ने उसमें लगाया, क्योंकि उसमें उनकी जान क्या थी, मुसीबत में थी, और ऐसा समझा दिया, अब वचन दे दिया, अब बताया कि आपको तो देवकी के आठवें पुत्र से खतरा है, न कि देवकी से, खतरा देवकी नहीं है देखे, लेकिन जबकि वो अपनी सही जगह था, कंस अपनी जगह सही था, कि जब हम खतरे, जब हम इसी को मिटा देंगे तो खतरा आएगा ही कैसे, तो वो अपनी बुद्धि सही था, लेकिन उसकी बुद्धि पलट दी, कौन यह वहां इन्होंने क्या बोल जाते हैं बसदेव ने, उन्होंने समझाया कि देवकी से तो कोई खतरा आपको है ही नहीं, देखिए इसको आठवें संतान से खतरा है, राइट, तो देवकी के मारने से आप इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हैं, आपकी बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे अपनी बहन को ही मार डालो, जो खतरा पुत्रों से था तो बहन को मारने कोई मतलब नहीं है। देखिए कंस जो कर रहा था अपने दिमाग से सही कर रहा था कि अगर हम जड़ को ही खत्म कर दे तो बच्चा पैदा ही कैसे होगा, वो अपनी जगह सही था, लेकिन उसकी बुद्धि को इन्होंने क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, किसने, बसदेव जी ने। तो बात करने में वाकपट होना चाहिए, बात करना ऐसा चाहिए कि आदमी को टर्न कर दे, अब बसदेव जी ने ही किया, बड़े दिमाग से किया, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे उस जहां पे प्रसंग आता है, आप देखना कितनी चतुराई से शास्त्रों का उदाहरण देकर, कई उदाहरण देकर के उन्होंने समझा दिया और समझ गया। अब फिर लास्ट में उन्होंने ब्रह्मास्त्र शब्द कर दिया, उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा हम उन पुत्रों को आपको दे देंगे, आप मार देना, जो करना हो करना, जो भी ये जब वचन दिया तब खुश हो गया कि बात तो सही कर बसदेव जी, देवकी से तो कोई खतरा ही नहीं, देखिए समझा दिया, और खतरा जो है आठवें संतान से है, और बसदेव जी करें कि हम सारे पुत्र दे देंगे, तब वो खुश हो गया। वास्तव में बसदेव जी को वचन पर से बड़ा विश्वास था, उसको मालूम था कि बसदेव जो है अपने वचन के क्या है, पक्के हैं, इसलिए इंसान को वचन का पक्का होना चाहिए, आप वादा करो सोच समझ करके, समझ गए, वादा करो सोच समझ के, जो वचन कहो वो वचन क्या हो, सत्य हो। तो उनके वचन को स्वीकार करके कंस मान गया, और तब क्या हुआ, लेकिन उसने जेल में डाला, जेल में रख करके अनिश्चिंत हो गया। जब पहली संतान हुई तो सुखदेव गोस्वामी एक कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब पहला बच्चा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उसका नामकरण तत्काल कर दिया था, उसका नाम कीर्तिमान रख दिया था, बताया गया कीर्तिमान, कीर्तिमान जो अगले इस पिछले श्लोक में बताया कि उसका नाम क्या रखा, कीर्तिमान, बच्चा हुआ और नामकरण हो गया कीर्तिमान नाम रखा। तो कीर्तिमान बच्चे को लेकर के बसदेव जी जो है वो जाते हैं, तो वचन का कितना पक्का है, तो वही सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि वे साधु पुरुष जो सत पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है, क्योंकि बसदेव जी भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान का भक्त होता है और सत्य पर अटल रहता है उसको कोई भी पीड़ा पहुंचा नहीं सकता। तो वही बता रहे, बहुत सुंदर श्लोक है कि वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है, अर्थात कोई भी वस्तु उनके लिए पीड़ादायक नहीं है। नहीं तो आप खुद सोचे कि पहला संतान उत्पन्न हो भी बेटा, और उसको मारने के लिए दे दें, ये बड़ा कठिन काम होता है एक पिता के लिए, अब वो माता के लिए जो जन्म देती है, लेकिन जो सत्य पर अटल है वो वचन के प्रति वचनबद्ध थे, इसलिए सत्य वचन उन्होंने जो दिया उस पर अटल थे, इसलिए ऐसी घटना भी उनको पीड़ादायक नहीं महसूस हुई। तो जो सत्य पर अटल होता है उस पे को कष्ट को सहन करने की क्षमता होती है, कोई भी चीज उसको पीड़ा नहीं दे सकती। सत्य का जब बात आता है तो किस राजा का नाम आता है, कौन बताए? हरिश्चंद्र। किसका नाम आता है? राजा हरिश्चंद्र। आप बताए कितने युग सतयुग की घटना है, और कलयुग में भी जहां सत्य की बात आती है तो एक ही राजा का नाम आता है, कौन? हरिश्चंद्र। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया कोई कर सकता है कि उनका है पुत्र? सोचने और कहा कि जब तक नहीं देंगे हम जलाने नहीं देंगे, कितनी बड़ी बात। सत्यपट अटल रहना आज के जमाने में तो बहुत मुश्किल है। आजकल तो सत्यवान पुरुष मिलना ही मुश्किल है। सच है कि नहीं सच है? असत्य, आप जानते हैं जब नोटबंदी हुई थी तो कितनी औरतें पकड़ी गई थी, उन्होंने ऐसा पैसा दबा के रखा था, है ना? हमारे एक बनारस के प्रभु जी हैं, इस कान से जुड़े हुए हैं, उनकी बता रहे थे कि उनकी वाइफ ने 5 लाख रुपए रखा था कैश उनके बिना जानकारी के, लेकिन जब नोटबंदी आई तो पैसा निकला। ये सच है कि नहीं सच है? यही सच है। असत्य, छल कपट, भाई अपनों से क्या छिपाना, राइट? लेकिन नहीं, चलता है सब। तो सत्य सामने आ गया, कह मैं तो हैरान रह गया, 5 लाख जो हमारे पास आई कि एक पैसा पड़ा हुआ है इसको चेंज करवाओ। स्थिति है, एक कलयुग की घटना है कि पति पत्नी में ही विश्वास की कमी है, सत्य और असत्य संघर्ष कर रहा है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। राम राज की जो लोग कल्पना करते हैं, क्यों करते हैं कि राम राज चाहिए? राम राज चाहने से नहीं होगा, राम राज तब होगा जब आप राम और कृष्ण के निर्देश के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तब ऐसा होगा। बताया गया कि उस समय अयोध्या में ताला नहीं लगता था, कहीं कोई चोर था ही नहीं। ये राम राज शास्त्र में बताया गया है, वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि उसमें ताले भी नहीं लगते थे, झूठ का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ सत्य वचन बोला जाता था, सबका दरवाजा खुला रहता था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, दरवाजा सब खुले रहते थे। आज आप अपना पर्स लेके जा रहे, लोग छीन लेते हैं मोटरसाइकिल से, सच है कि नहीं? मोबाइल छीन लेते हैं, इतनी असुरक्षा की भावना। तो कलयुग में और दूसरे युगों में कितना अंतर है। ऐसा इसलिए कि पहले लोग सत्य पर टिके थे, आपस से प्रेम होता था, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा था, भक्ति से धर्म प्राण था। अब महाराज दशरथ का ऐसा सिस्टम था, ये आवश्यक है। और आज के लोग कल्पना करें राम राज की, पहले राम के बारे में सोचे, पहले राम और कृष्ण का जो संदेश है, पहले भगवत गीता तो पढ़ो। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई गीता पढ़ता ही नहीं। गीता लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन पढ़ते हम बेचते हैं ना गीता, बेचते नहीं बेचा। अब हम लोगों ने 7-8 लाख गीता बेचा है, तो गीता तो बिक तो जाती है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? ये समस्या है। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, लाखों लोग हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, सुधरते कितने हैं? कितने लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कोई धाम चुन किसी भी धाम में जाओ, भीड़ भीड़ नजर आ गई। लेकिन अगर जितने लोग जाते हैं अगर सब सुधर जाते हैं तो संसार कितना सुखी रहता है। लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा है कि लोग जाते हैं पिकनिक जैसा बना लिए धामों को, है ना, और आके फिर वही करते हैं। वृंदावन जाएंगे राधे राधे करेंगे और आके दिल्ली में फिर वही कर्म करना शुरू, जो काम उनका करना शुरू करेंगे, झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, चोरी करें, जिसका जो काम करना है। चोर भी जाते हैं, आप डाकू भी जाते हैं, मांसाहारी भी जाते हैं, सब धाम में जाते हैं, जाते ही नहीं जाते, सब जाते हैं, सब राधे राधे ऐसा परिक्रमा करेंगे खींच खींच के, है ना। लेकिन जब आते हैं फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये समस्या है। तो धाम में जाना जाइए, लेकिन थोड़ा सा भी अगर अपराध करेंगे तो उसका कई गुना आपका उसका फल भुगतना पड़ेगा। वहां पे जा करके भी अगर आप ईर्ष्या द्वेष जलन चोरी चमारी करते हैं, एक दूसरे का करते हैं, तो कोई फायदा नहीं, बल्कि आपको और नुकसान ही होगा। धाम रहना आसान काम नहीं है। राधे राधे कहना, आप क्या सुनते कि मथुरा वृंदावन लोग कुकर्मी नहीं है? बड़े कुकर्मी है। लेकिन ये कहना कि वो चूंकि धाम में बड़े भागशाली जीव है, क्या खाक है? अगर कुकर्म करते हैं तो क्या खाक भागशाली है? गलत है। सब जगह यही चल रहा है, पंडे लोग क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, शराब पीते हैं, नशा करते हैं पंडित लोग, है ना, कथा यहां सुनाते हैं, वहां अपनी बिल्डिंगें बनवाते हैं। क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कथा यहां सुनाते हैं, माल यहां से ले जाते हैं, अब वृंदावन में अपनी बड़ी कोठिया बनवा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, बच्चों का अमेरिका भेज रहे हैं। क्या हो रहा है? सच है कि नहीं सच है? क्योंकि कोई भगवत धाम जाना ही नहीं चाहता, सब यहीं पे आनंद लेना चाहते हैं। ये समस्या है। इसलिए इस संसार का सुधार नहीं हो सकता। सुधार तभी होगा जब गीता वाले गीता पढ़ेंगे, कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे और बाइबल वाले बाइबल को फॉलो करेंगे। पर इस संसार की समस्या क्या है कि कोई भी अपने अपने ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो समझता नहीं है, समझ गया तो अपने जीवन में उतारता नहीं है। इस समस्या है, इसलिए पूरा विश्व परेशान है। हमारे प्रभुपाद जी ने बोला टंकी की चोट पे कि बाइबल कहते कि दाव शुड नॉट किल, तुम जीव हत्या नहीं करो, तुम कर रहे हो। तो कोई भी अपने अपने ग्रंथों को फॉलो नहीं कर रहा है। तथा कथित हिंदू जो कहते हैं मैं हिंदू हूं, ये सब फॉलो नहीं करते, है ना। पंडित तो चाय पीते हैं, जो मर्जी खाते पीते हैं, जो कथा सुनाते हैं उनकी हालत बता रहा हूं। मैं तो इलाहाबाद को, वहां प्रयागराज का हूं, वहां तुम देखते हैं पंडितों को रामायण का पाठ करेंगे, असुरती तंबाकू खैनी खाएंगे, भांग बनेगी पियेंगे, कहे हम चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण खाक ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी मांसाहारी हो गए, नशा करने लगे, सोचने वाली बात। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बड़े बड़े साधु संत भी जो है जेल क्यों जा रहे हैं कि वे साधु के वेश में भेड़िए बने हुए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए उद्देश्य की आप क्या कल्पना करेंगे। नहीं तो बाबा जी लोग आज जेल नहीं जाते, क्यों जा रहे हैं? सब फर्जी लोग, पाखंडी लोग। ये सारी समस्या है। वही तो बोल रहे हैं सुखदेव स्वामी कि जो सत्य पर अटल रहता है उसको कोई कष्ट होता ही नहीं, क्योंकि कष्ट सहन की करने की क्षमता किसमें होती है? सत्यवान पुरुष पर होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, बसदेव जी महाराज, एक कितनी बड़ी बात की अपना ही बेटा और मरने के लिए दे रहे, मारने के लिए दे रहे, और कष्ट नहीं फील करें। क्यों? और सत्य पर अटल है। उनका पूरा विश्वास किस पर है? कृष्ण पे। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी सब मारे जाएंगे आठवां पुत्र आएगा और उनका क्या होगा, अवतार होगा कृष्ण का। यही तो प्रभुपाद समझा रहे, ये चीज है। दूसरा कह रहे हैं उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत् के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। वो स्वतंत्र होते हैं जो भगवान को क्या जानते हैं, तत् से जानते हैं। भगवान गीता में बात करते हैं कि मनुष्याणाम सहस्र कच्ची सिद्ध है, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी ओर आता है, और उन आयु व्यक्तियों में कोई दुर्लभ बिरला एक निकलता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। असम महात्मा शो दुर्लभ है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। हम देखते हैं ना भक्तों की कितनी भीड़ है, लेकिन उसमें शुद्ध भक्त कितने निकलते हैं, सच है नहीं सच? आप सोचिए, बहुत मुश्किल है भक्ति करना। तो बहुत भक्तों की बड़ी भीड़ नजर आएगी हर अखाड़ा में, हर आश्रम, हर जगह, लेकिन शुद्ध भक्त बिरला निकलता है, ये भगवान कहते हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और जो वास्तव में जो तत्व से जान पाता है, फिर वही सुदेव गोस्वामी कहे भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त पर माया का सिकंजा असर नहीं करता, स्वतंत्र इंडिपेंडेंसी होती है उसके अंदर। हमारे प्रभुपाद जी एक निकले इस धरती पर, चैतन महाप्रभु के बाद हमारी इस परंपरा में भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद जी निकले। प्रभुपाद जी की वजह से ही पूरे दुनिया में लोग भगवान जगन्नाथ जी को जान गए, सोचने वाली बात। प्रभुपाद जी उदाहरण है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किसने निकाली, प्रभुपाद जी निकाली। आज पूरे इस्कॉन के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का टंका बज रहा है, किसकी वजह से, एक शुद्ध भक्त, एक तत्व से भक्त आया और तहलका मचा दिया। चेतन महाप्रभु भगवान है, हम लोग खुद नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से हम आज समझ गए कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, कितनी बड़ी बात है। तो इस धरती पर बीच बीच में कोई न कोई एक शुद्ध भक्त निकलता है। इस कलयुग में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु आए आज से लगभग 533 साल पहले अलग जगह, उसके बाद हमारे श्री प्रभुपाद जी आए और अलग जग रही है, भक्ति का प्रचार प्रसार चल रहा नहीं चल रहा है। तो ऐसे युगों में कोई न कोई आता रहता है, इसीलिए जेसस जी आए थे, जेसस को भी प्रभुपाद के भगवान के मैसेंजर थे, लेकिन उनको लोग नहीं समझ पाए, सूली पे चढ़ा दिए। जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि हे पिता इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में एक किताब इस कौन की निकली है, क्राइस्ट एंड कृष्णा। प्रभुपाद जी ने कहा कि जेसस सेट आई एम द सन ऑफ माय फादर, कृष्णा सेट आई एम दैट फादर, दिस इज डिफरेंट बिटवीन क्राइस्ट एंड कृष्णा। विदेशों में तब जाके प्रचार फैला कि कृष्ण ही क्या है, भगवान वो फादर है और जेसस क्या है, उनके पुत्र है, जो एक मैसेज लेके आए थे और मैसेज दिया। जेसस भगवान नहीं थे, वो तो भगवान के क्या थे, सेवक थे, मैसेंजर थे, जैसे प्रभुपाद जी। तो बहुत आवश्यक है कि हमको ये चीज जाने, निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन सा कार्य वर्जित है, अर्थात जो चरित्रहीन व्यक्ति है वो कुछ भी करने कर सकता है, सच है नहीं सच है? जैसे कंस, ये सब चरित्रहीन लोग, रावण, रावण की चरित्रहीनता तो तभी तो भगवान को आना पड़ा, सब बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के। प्रहलाद महाराज के पिताजी, सोचने वाले कि बेटा इतना महान भक्त, पिता उतने ही राक्षस, सोचने वाली, इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा दुष्ट कि अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, करेक्टरलेस व्यक्ति जो है, वो कुछ भी कर सकता है। यही तो सुखदेव गोस्वामी ग्रंथ। और इस कलयुग में ज्यादातर लोग क्या मिलते हैं, चरित्रहीन ही मिलते हैं। आप टेलीविजन अखबार में देखें, ऐसे ऐसे मनुष्य को आता है कि रिश्ते भी खत्म कर देते, रिश्तों का कोई वो नहीं, इतनी चरित्रहीनता है। तो जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन सा कार्य वर्जित है, कि जो जिसका चरित्र निम्न कट का होता है वो कुछ भी कर सकता है। कंस उसी कैटेगरी में आता है, अपनी बहन को ही मार रहा है देखे, और वो इतना दुष्ट था कंस कि स्वयं राजा बनने के लिए अपने नाना को जेल में डाल दिया था। किसको? उग्रसेन जी महाराज को। उग्रसेन जी महाराज को जो है भगवान के नाना थे, उग्रसेन जी महाराज नाना लगते थे कृष्ण, उनको भी जेल डाल दिया। इसीलिए भगवान जेल में ही पैदा हुए, जेल से अपने नाना को छुड़ाने के लिए और अपने माता पिता बसुदेव को छुड़ाने के लिए इस संसार में कृष्ण आए और जेल में ही आए। देखिए स्थान, देखिए भगवान का उत्पन्न होने का जगह, कि जब राम आए तब महाराजा दशरथ के महल में प्रकट हुए ना, कृष्ण बेचारे जेल में प्रकट हुए, और नरसिंह कहां से प्रकट हुए, खंभे से। सोचने वाली बात, समय और परिस्थिति के अनुसार को भगवान प्रकट होते हैं, ये भगवान की महानता है। तो हम सबको बड़ा सतर्क रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज का एक एक शब्द हम लोगों को समझने की जरूरत है, और जब समझ में आए तो जीवन में उतारने करना चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं कि जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। क्या करे प्रभु जी, झूठ बोलना ही पड़ता है, बिजनेस ही ऐसा है। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में यही सब पनपते हैं, झूठ छल कपट, इसी का तो बहार है। तो ऐसे छल कपट के युग में, लड़ाई झगड़े कलह कलह के युग में आप सुख की तलाश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तो दुखों का घर है, दुख आलम अस्वास्थ्यम। तो इसीलिए इस कलह के युग में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो एक ही साधन है, वो साधन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके अलावा और कोई साधन नहीं। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु धरती पर इसीलिए आए ताकि इस कलह के युग में हम इंसानों को क्या करें, बचा सकें, इसके लिए आए। निश्चित रूप से जो हमारी संस्था जो भक्त जुड़ गए हैं, अगर ईमानदारी से चार नियमों का पालन करें, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि गिर गए हैं लोगों, है नहीं, ईमानदारी से अगर जो चार नियमों का पालन करेगा, 16 माला का सही ढंग से जप करेगा, दिखाने के लिए नहीं, सही जप करेगा, तो उसको इस संसार में रह करके भी वो आनंद ले सकता है। अगर आप भक्त बने करके भी अगर आप खुश नहीं, प्रसन्नता नहीं है, तो खोट तुम्हारे अंदर है। क्योंकि शास्त्र और जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, फॉलो कौन कितना कर रहा है वो होना चाहिए। इसलिए आप किसी भी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम, आप जिस भी आश्रम है, नियम से ईमानदारी से उस नियम का पालन करेंगे। चार नियम जो बहुत कठिन है इस कलयुग में, अगर निश्चित रूप से पालन करेंगे 16 माला का जप करेंगे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार जीवन चलने का प्रयास करें, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, प्रसन्न रहेंगे। फिर और क्या चाहिए आपको? तो तीन चीज हमारे इस्कॉन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्या होता है? साधना। क्या होता है? साधना। अगर आप आश्रम में रहते हैं और आश्रम के पास आसपास रहते हैं, तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है उसमें अवश्य आना चाहिए, बहुत आवश्यक। साधना। दूसरा स्थान आता है सिद्धांत का। किसका? सिद्धांत। साधना जितनी मजबूत होगी आपका सिद्धांत उतना ही मजबूत होगा, और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में गए प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी, लेकिन सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। तो हमें भी सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी जो फिलॉसफी है उसे कोई समझौता नहीं किया। कोई हमसे जुड़े न जुड़े, नाराज हो, लेकिन हमें वही बोलना है जो शास्त्र में बताया गया है। प्रभुपाद जी तो चलते चलते बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को चोर बोल देते थे। एक बार हमारे श्री प्रभुपाद जी जुहू बीच समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जपा वॉक में। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे वो, है ना। तो प्रभुपाद जी छड़ी साथ लेके चलते थे, तो अपनी छड़ी जो बालू होता है ना उसे धसाते हुए जा रहे थे। उनके साथ कई प्रभुपाद शिष्य थे, 2-3 बिजनेसमैन भी थे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे धसाया, रुक गए छड़ी को, तो कई भारी देश तलों का दिस सैंड माने बालू है। तो जो बिजनेसमैन था कहे बालू है, तो बिजनेसमैन प्रभुपाद जी कहते हैं आप बिल्डर हो? कि यस। कि ये बालू किसकी है? भगवान के। कि तुम लोग चोर हो, भगवान की दी बालू से बिल्डिंग बनाते हो, अब भगवान के लिए कुछ नहीं करते। बिल्डिंग किससे बनती? बालू से, सीमेंट से और ईंटा से। ईंटा किसका है? भगवान की। मिट्टी किसकी है? भगवान ने बनाई है। ये लोग मिट्टी को खोद करके अब उसको जो है करके बिल्डिंग बना देते हैं, भगवान का नाम तक नहीं देते, कहे तुम चोर हो। प्रभुपाद जी वही पे सब साले सिद्ध कर दिया। ये बालू कहते ना माफिया, बालू की माफिया नदी किनारे जाएंगे, ट्रक में भर कर चोरी छिपके चले जाएंगे। तो भगवान की भी दी वस्तु से तुम घर बनाते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नाम नहीं लेते। तो ऐसा दम था। तो सिद्धांत से कभी समझौता हमको नहीं करना चाहिए। तो तीन चीजें हमारे, साधना, सिद्धांत, और तीसरा नंबर क्या होता है? सेवा। आपको जो भी सेवा दी जाए उसको लगन से करना चाहिए, दिल से सेवा करना चाहिए। तो अगर आपकी साधना, सिद्धांत और सेवा ये तीनों मजबूत है, तो आपको आनंद में कोई बाधा नहीं आएगी। प्रभुपाद जी की कृपा बराबर बन रहेगी, भगवान भी क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे, पूरी परंपरा आपसे प्रसन्न रहेगी। सबका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो आप भी क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। कभी हमें शास्त्र सिद्धांत उसको दोष नहीं देना। दोष किसको देना चाहिए? अपने को देना चाहिए कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। नियम तो बता दिया गया है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान गीता में बता दे, कर्मणे वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, फल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। तो कर्म अपने ही करना है, चार नियम अपने को ही पालन करना है, जप मुझे ही करना है, क्योंकि साधना मुझे ही करनी है। अगर ईमानदारी से साधना करेंगे, सिद्धांत पर अटल रहेंगे, जो सेवा दी जाए उसको भी ईमानदारी से करेंगे, तब आप हमेशा आनंद में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लेके कोई चीज कोई कर, तनिम चरित्र वाले पुरुषों के कौन सा कार्य वर्जित है, अर्थात कुकर्मी आदमी कुछ भी कर सकता है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। जैसे वसुदेव जी महाराज अपने बेटे को त्याग दे, सौंप रहे कि यत ले तुम मार, तो कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी से क्या बोला था, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने अपने धर्म पत्नी से क्या बोला था? प्रभुपाद जी की वाइफ ने क्या किया था कि जो ग्रंथ था उसको बेच करके क्या ले लिया था, चाय ले लिया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू वॉन्ट टी और मी, कि तुम्हें चाय चाहिए या मुझे चाहिए? तो कही टी, तो कही यू ड्रिंक द टी, आई एम लिविंग। प्रभु छूट चले गए। तो जो कृष्ण को समर्पित व्यक्ति है वो किसका त्याग नहीं कर सकता। अच्छा, वो भगवान के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है। प्रभु पाद जी उदाहरण हमारे सामने, वसुदेव जी कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। कोई अपना बेटा मारने के लिए देगा? सोचने वाली बात, लेकिन कितनी भी, ये भी त्याग है किसके लिए? कृष्ण के लिए। कि उनकी इच्छा थी कि जितनी जल्दी हम मारे जाएंगे, साथ आठवां जल्दी से आएगा, हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, इसके लिए, कृष्ण के लिए। तो त्याग की भावना होनी चाहिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्या कृष्ण के लिए हम लहसुन प्याज नहीं त्याग सकते? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं प्याज नहीं छोड़ पाते। कल एक हम बहुत बड़े डोनर के यहां गए थे, है ना, घर में मंदिर भी है, सब कुछ है, भक्त भी है, डोनेशन देते हैं, लेकिन प्याज नहीं छोड़ सकते। तो कल मैंने बहुत समझा, हमका प्याज को जन्म कर्म है, हमका आप जो खा रहे हैं पाप खा रहे हैं। कि गीता में भगवान क्या कहा है कि जो मुझे भोग लगाए नहीं खाता है, जो भोग लगाए बिना खाता है, क्या खाता है? पाप खाता है। तो आप पाप खा रहे हैं, अरबपति बने लेकिन पाप खा रहे हैं, इसका तो आपको भुगतना पड़ेगा। कि हाँ प्रभु जी, आपने तो बहुत अच्छा कहा, बात सही है। हम कहा हमारे इस कौन में, आप हमारे पूरे वर्ल्ड के ऋषिमान में आप गए हैं, गोविंदा ऋषि में, क्या हम लोग नहीं बताए राजमा बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, अब बिना प्याज का बनाते हैं, ठाकुर जी भोग लगाते हैं, अब दबा के खाते हैं। कई आस में छोड़ देता हूं। हमका इतने करने से आप कितना गलत काम करें, पाप खा रहे हैं। अब पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति पाप खाएगा और सोचे कि हम धाम में जा करके राधे राधे करके वृंदावन घूम करके मर्सिडीज से पुण्य का फल कमा लेंगे, नहीं कमाओगे, कि तुम भगवान की बात सुन ही नहीं रहे हो। सच है कि नहीं सच है? इसलिए जो लोग धाम में जाते खूब दबा के जाए, लेकिन कुंजर स्नान न करें। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उदाहरण है कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, गंगा में जाएंगे नहाएंगे और फिर आके पाप करेंगे। कैसे? हाथी की तरह, जैसे हाथी को दबा के नहाता है पानी में और बाहर आता सारी मिट्टी फिर डाल लेता है। तो ऐसे नहाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दबा के पाप करेंगे तो हरि नाम लेंगे सब धुल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। यह भी एक नाम अपराध में आता है कि नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये भक्ति बहुत ऐसा है, तो धाम में जाइए खूब जाइए, लेकिन धाम से आने के बाद फिर गलत काम मत करिए, कोई फायदा नहीं। आप जाओ परिक्रमा करो, कुछ भी करो, गंगा में स्नान करो, लेकिन अगर फॉलो नहीं करते कोई तो वही कुंजर स्नान जैसा हो गया। और दुनिया ऐसे कर रही है, इसलिए हर इंसान परेशान है। सच है कि नहीं सच है? वैष्णो देवी जाते हैं लोग, है ना, जितनी बूंदी नहीं उतनी समस्या लेके खड़े रहते हैं देवी देवताओं के पास, है नहीं, मेरा ये हल कर दो, मेरा हल कर दो। अरे तुम पूर्ण का काम करो, भगवान का नाम लो, अपने आप आपकी समस्या का हल होगा। वो नहीं करना चाहते, भगवान के नाम का जप नहीं करना चाहते, भगवान को भोलो का प्रसन्न चाहने को पान नहीं करते, लेकिन समस्या उनकी सारी पूरी खत्म हो जाए तो कैसे संभव। आप खुद सोच सकते हैं कि जब पांचों पांडव इतने महान भक्त थे, पांचों पांडव कितने महान भक्त थे कि स्वयं कृष्ण उनके साथ थे, तब उनका कष्ट झेलना पड़ा इस धरती पर। तो आपको क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? हम पांचों पांडव की तरह थोड़ी भक्त हैं, शुद्ध भक्त। तो नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त बनेगा उसको कष्ट नहीं सहना करना पड़ा, करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कितना सहन करना पड़ा, लेकिन भगवान के साथ रहने से क्या होता है, वो सब सहन करने की होती है शक्ति मिलती है, भगवान मदद करते हैं। पांचों पांडव को भगवान ने क्या किया, हेल्प किया। अब सोचे भगवान नहीं होते तो क्या होता पांडव का, जब वो थे तब इतना कष्ट झेलना पड़ा। प्रहलाद महाराज कितना कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन किसने बचाया, भगवान ने। तो भक्ति में आकर के भी आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर अटल रहेंगे भक्ति में तो भगवान आपको क्या करेंगे, सहारा देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है तीसरे बारे में कि जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, उसको क्या त्याग नहीं कर सकता है। तो आप भक्तों से अनुरोध है कि जो लोग अभी भी आप लोग प्रचार को जो लहसुन प्याज खाते हैं, चाय पीते हैं, उनको छुड़वाओ, भैया पाप मत खाओ। तो कैसे इस संसार बच सकता है जब इंसान पाप ही खाएगा, चार नियम को ही तोड़ेगा, फिर कैसे सुखी रह सकता है, सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इस भौतिक संसार में अगर रहना है तो भौतिक संसार को जिसने बनाया है, कृष्ण ने बनाया है, उनके अनुसार अगर इंसान जीवन जिएगा तो क्या रहेगा, सुखी रहेगा। इसीलिए चेतन महाप्रभु आए और सुखी रहने का क्या साधन दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये साधन है। तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर नाम लेना है, चार नियम का पालन करना है, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना है, और जो भी सेवा आपको दी जाए उस सेवा के ईमानदारी से करेंगे, प्रभुपाद जी की जिम्मेदारी है, वो आपको भगवत धाम ले जाएंगे। सिर्फ प्रभुपाद जी के अनुसार चलेंगे, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ये बड़ा अच्छा प्रसंग है वैसे देखा जाए तो। हाँ बोले माता जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये माइक दे दो, माइक टाइम ज्यादा हो गया पता नहीं चलता। हाँ बोले, हाँ बोले बोले, इतने क्या बोले, कोई सुनकर हमको बता दे, कोई सुने फिर हमको बता दे। मैं समझ गया, देख इसका इसका जानते हैं कारण क्या है? हाँ, समस्या क्या है कि भगवत गीता में भगवान ने सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। क्या चीज? भगवान श्री कृष्ण। तो इस संसार में सारी समस्या क्या है कि जो भगवान ने संदेश दिया, जैसे जीवन जीना कैसे चाहिए, एक गीता भगवत है, तो लोग उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन करना चाहिए, यही तो भगवान की नहीं सुनिए, करना चाहिए। आप फॉलो नहीं करेंगे तो फल तो भुगतेगा ही। इसीलिए भगवान कहते, भगवान ने कहा है हमको क्या सात प्रकार के, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। अब भगवान ने कह दे कि तुम करो। भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता इंडिपेंडेंसी दिया है कर्म करने के लिए। अब जीव ना करे तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, डोंट इंटरफेयर। तो सारा दोष जीव का होता है। जैसे आपको रास्ता बता दिया कि आपके ये रास्ते हैं, अब आपको अपनाना है कि हमें कौन रास्ते चलना है, ये सच है ये झूठ है बताया गया। लेकिन जीव जो है माया का अधीन रहता है, वो करता है। तो जीव जो है बड़ा चालाक है, अपनी गलती से स्वीकार नहीं करता। तो आप वही फॉलो करो, बहस का कोई अंतर नहीं यहाँ, इसमें ऐसा नहीं करना। इसके लिए हमें जो है आराम से बैठे अभी आई फिर बात करेंगे, ठीक है ना? ये बहुत इजी है, लेकिन चालाक बहुत कहते ना, जो शराबी व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि पीने वाले पीने का बहाना चाहिए। या इंसान जब गलत काम करना होता है तो बहाना निकाल लेता है। तो जीव बहुत चालाक है, बहस करना वो जीव क्या फॉलो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बहस करने तर देने बहुत मार्स होता है। शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, असली पढ़ने से काम नहीं होता। पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही समस्या है, यही समस्या है। कोई पहली बात, कोई पढ़ना नहीं चाहे, पढ़ेंगे भी समझे नहीं। और जब हाँ तो, आप मेरे रूम में आ जाइए भी, जहां प्रसाद में अकेले में बात करें। टाइम लेंगे ना, हमारे भक्तों के साथ बैठो, सब पता है, कोई भी चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव है।